हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। तब मैं समझी कि जरूर कोई ना कोई अपना जादू आजमा रहा होगा या कुछ ना कुछ कर रहा होगा, इसीलिए मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब तुम्हारी बात सुनने के बाद मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसके पीछे काली शक्तियों के मालिक अमित का हाथ है। मुझे लगता है कि तुम्हें इसकी तह तक जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। जैसे सोनल परी ने तारा परी से सारी बातें की, अब तारा परी का दिमाग भी जोरों से चलने लगा था और उसे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होने लगा था कि जब से काली शक्ति का मालिक अमित इस घर में आया था, तब से ही अमन इस तरह का बर्ताव कर रहा था। तो कहीं ना कहीं अब तारा के शक को भी हवा मिल चुकी थी और उसने मन ही मन में सोनल परी से कहा, मुझे लगता है कि जो कुछ तुम कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो। मुझे अब उस काली शक्तियों के मालिक अमित पर निगाह रखनी होगी, लेकिन उसके लिए मुझे एक और परी की जरूरत पड़ेगी जो गायब होकर उस पर 24 घंटे नजर रख सके। क्योंकि अगर तुम गायब होती हो तो शादी का काम कौन संभालेगा, क्योंकि तुम इन लोगों की नजरों में एक वेडिंग प्लानर हो और मैं गायब हो नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे भी साथ साथ सभी फंक्शंस होने हैं। तो इसीलिए मुझे अभी रानी माँ से जाकर इस बात की इल्तिजा करनी होगी कि मुझे एक और परी चाहिए जो मेरी मदद कर सके। जैसे ही तारा परी ने ये कहा, सोनल परी हल्का सा मुस्कुराकर अपनी गर्दन हिलाकर उसे हाँ कह दिया और तब जल्दी ही तारा परी कुछ सोचते हुए अपने कमरे में चली गई। और जैसे ही वो कमरे में गई, उसने देखा कि अमन अभी तक सोया हुआ था। अब तारा परी फिर हैरान थी, क्योंकि अमन को हमेशा से ही जल्दी उठने की आदत थी। हालांकि वो एक दो बार जब पिशाच बना था तब उसने तारा के साथ काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, इसीलिए वो उसके पास से नहीं उठा था, उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका प्यार था। लेकिन आज अमन का इस तरह से सोना कहीं ना कहीं बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तब तारा ने सोचा कि क्यों ना वो एक बार और अमन को उठा दे, लेकिन फिर उसने सोचा, क्या करूं, अमन को उठाने के लिए गई तो क्या अमन एक बार फिर उसके साथ रिश्ता बनाने के बारे में ना सोचे। तो इसीलिए तारा ने अमन को उठाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। लेकिन उसे अभी नहा धोकर सबसे पहले अपने कुछ मंत्रों का उच्चारण करके अपनी माँ यानी कि रानी माँ से बात करनी थी और साथ साथ एक परी को परीलोक से पृथ्वीलोक पर बुलाना था ताकि वो गायत होने वाली शक्ति का प्रयोग करके अमित के पीछे लगा सके और वो 24 घंटे अमित क्या कर रहा है उसकी जानकारी तारा परी को दे सके। तो इसीलिए तारा परी को एक अलग कमरे की जरूरत थी, इसीलिए तारा परी ने जल्दी से नहा धोकर बड़े ही खूबसूरत सा लिबास पहना और अपने जिस्म को खुशबू से सजा लिया। और जैसे ही वो तैयार होकर बाहर निकली, उसने देखा कि अमन उसे देखकर ही मुस्कुरा रहा था। अमन को इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर तारा को हैरानी हुई और वो कहने लगी, लेकिन अभी तो मैं यहाँ से गई थी, तब तो आप सोए हुए थे, इतनी जल्दी आप कैसे उठ गए। तभी अमन अचानक बिजली किसी तेजी से तारा के एकदम करीब आकर खड़ा हो गया, उसके बालों को सूंघता हुआ कहने लगा, न जाने मुझे क्या हो गया है, ऐसा दिल करता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम में खोया रहूं, हमेशा तुम्हारे खूबसूरत जिस्म से लिपटा रहूं। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है। जैसे ही तारा ने अमन की इतनी नॉर्मल बातें सुनी तो तारा को यकीन हो गया कि अभी अमन पर किसी तरह का कोई साया नहीं है और वो बड़े ही आराम से बातें कर रहा है। तब तारा ने जल्दी से अमन से कहा, लेकिन कल भी आपने मुझे दो तीन बार परेशान किया, क्या आप जानते हैं। जैसे ही तारा ने ये कहा, अमन हैरान होकर कहने लगा, तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं बिना मर्जी के तुम्हें नहीं छूता हूँ, फिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। जैसे ही अमन ने ये कहा, अब तो तारा की हैरानी पूरी तरह से बढ़ चुकी थी और वो समझ चुकी थी कि जो कुछ भी सोनल परी कह रही थी वो सच प्रतिशत सच कह रही थी, जरूर इसके पीछे काली शक्तियों के मालिक अमित का हाथ है। तो इसीलिए तारा को अब जल्द से जल्द अपनी एक और परी को बुलाना ही था। तभी अमन की टेंशन को दूर करने के लिए तारा ने जल्दी से कहा, वो मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप जाइए जल्दी फटाफट से नहा लीजिए, मॉम आपको बुला रही हैं। ऐसा कहकर तारा ने अमन को नहाने के लिए भेज दिया और खुद उसने फटाफट से कड़े मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। तारा परी अच्छी तरह से जानती थी कि जब तक अमन बाथरूम में रहेगा वो आसानी से अपनी रानी माँ से बात करके एक परी को वहाँ बुला सकती थी, क्योंकि तारा को इस वक्त किसी एक परी की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। इसके लिए उसने किसी और परी को नहीं बल्कि रीत परी को चुना था, क्योंकि रीत परी बहुत समय से तारा के साथ पृथ्वीलोक आना चाहती थी। हालांकि तारा परी ने रीत परी के साथ हुए हादसे को पूरी तरह से भुला दिया था, लेकिन रीत परी ये नहीं भूल पाई थी कि तारा पृथ्वीलोक पर रह रही है सिर्फ और सिर्फ उस राक्षस से बचने के लिए। और जब जब तारा रीत परी के साथ होती थी, रीत परी हमेशा से ही पृथ्वीलोक देखने का अपना सपना तारा के सामने बोला करती थी, तो आज तारा को मौका भी मिल गया था और बहाना भी हो गया था। तो इसीलिए उसने जल्दी ही रानी माँ को अपने कड़े मंत्रों के द्वारा याद करना शुरू कर दिया और जल्दी ही परी के पूरे कमरे में एक अलग ही तरह की रंग बिरंगी रोशनी बिखर चुकी थी। उस रोशनी के बिखरते ही रानी माँ बड़े ही खूबसूरत कपड़े और चमकीले चेहरे के साथ तारा परी के सामने मौजूद थी। अपनी माँ को अपने सामने देखकर तारा काफी ज्यादा खुश हो गई थी, उसने आगे बढ़कर अपनी माँ को गले से लगा लिया और कहने लगी, रानी माँ आप नहीं जानती कि मुझे इस वक्त आपकी कितनी ज्यादा जरूरत थी, आपको मेरी मदद करनी ही होगी, इस वक्त मुझे आपकी मदद की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जैसे ही तारा परी ने ये कहा, रानी माँ हल्का सा मुस्कुरा उठी और अपनी प्यारी बेटी तारा की ओर देखकर कहने लगी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरी बेटी को मेरी जरूरत आन पड़ी थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पृथ्वी लोक पर हो तो क्या मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है? मैं हर रोज तुम्हें देखती हूँ जब मैं उस राक्षस को पत्थर मारने के लिए जाती हूँ, तब वहाँ से आने के बाद मैं तुम्हें हर रोज देखती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि इस वक्त तुम किसी उलझन में हो। लेकिन तारा बेटी, मैं रीत परी को यहाँ भेज तो दूंगी, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो रीत परी के साथ जो हादसा हुआ था वो हादसा तुमने अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा मिटाया था। लेकिन अगर पृथ्वी पर कुछ भी उल्टा सीधा हो गया तो रीत परी को सब कुछ याद आ सकता है, और उस वक्त तुम अच्छी तरह से जानती हो कि कितने बड़े और भयानक परिणाम हो सकते हैं। जैसे ही रानी माँ ने ये कहा, तारा परी अब सोच में पड़ गई और कहने लगी, रानी माँ, मुझे पता है कि आप जो कुछ कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे किसी और परी का ध्यान आ ही नहीं रहा है। मुझे सिर्फ और सिर्फ बार बार रीत परी का ही ख्याल आ रहा है। तो आप रीत परी को यहाँ भेज दीजिए, और इस बात का मैं पूरी तरह से ख्याल रखूंगी कि पृथ्वी लोक पर कुछ भी ऐसी सिचुएशन ना आए कि उसे कुछ भी याद आए, और मैं इस चीज का पूरा ख्याल रखूंगी, उसे कुछ भी याद नहीं आने दूंगी।
जैसे ही तारा परी ने ये कहा, रानी माँ हल्का सा मुस्कुरा दी और कहने लगी, ठीक है बेटी, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। अभी मैं चलती हूँ और रीत परी को यहाँ भेजने की तैयारी करती हूँ, और तुम परेशान मत होना, बहुत जल्द रीत तुम्हारे सामने मौजूद होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है तुम पहली ही नज़र में उसे पहचान लोगे, और उसके बाद तुम्हें उसे क्या काम करवाना है तुम उसे बता सकती हो। ऐसा कहकर रानी माँ वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी तारा परी रानी माँ को रोकते हुए बोली, रानी माँ, क्या वो राक्षस अभी भी बातें करता है? जैसे तारा परी ने उस राक्षस का नाम लिया, तब रानी माँ के चेहरे पर कुछ अलग ही तरह के भाव आ गए थे, लेकिन अगले ही पल वो अपने आप को नॉर्मल करती हुई बोली, बेटी, बस तुम जल्द से जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाओ और जिन की वंशज के साथ परीलोक लौटाओ, उसके बाद उस राक्षस का अंत निश्चित है, मुझे पूरी उम्मीद है। ऐसा कहकर रानी माँ वहां से जाने लगी थी, लेकिन रानी माँ के चेहरे पर आए हुए भाव को देखकर कहीं ना कहीं तारा परी समझ चुकी थी कि कुछ तो है जो उसकी माँ उससे छुपा रही थी। लेकिन फिलहाल वो इसी बात से खुश थी कि रानी माँ ने एक परी यानी कि रीत परी को पृथ्वी लोक पर भेजने के लिए मान लिया था। वेल, जल्दी ही रानी माँ के जाने के बाद जैसे ही तारा परी मुड़ी, अचानक से उसने देखा कि उसके पीछे अमन खड़ा हुआ था। अब अमन को इस तरह से अपने पीछे देखकर तारा की हैरत का कोई ठिकाना नहीं था, और उसे ऐसा लगने लगा मानो कि कहीं अमन ने उसकी कोई बात तो नहीं सुन ली। लेकिन अमन धीरे से तारा के पास आया और तारा को गले से लगाते हुए कहने लगा, क्या हुआ है, ऐसा क्यों देख रही हो? क्या तुम्हारा पति नहाने के बाद कुछ ज्यादा ही हैंडसम दिखता है? ना, आखिरकार मेरा नाम अमन सिंह राठौर है, और तुम अच्छी तरह से जानती हो अमन सिंह राठौर केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक खूंखार जिन भी है, और इतना ही नहीं, जिन महालाज है और साथ ही साथ तुम्हारा पति है। ऐसा कहकर अमन हल्का सा मुस्कुरा दिया। तारा पूरी तरह से हैरान हो गई थी कि अमन अपनी तारीफ इतनी बढ़ा चढ़ाकर क्यों कर रहा था, लेकिन फिर उसे एहसास हो गया था कि आखिरकार अमन ऐसा क्यों कर रहा था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहने लगी, हाँ मेरे मालिक, आप बस हुक्म कीजिए, ये नौकर आपके लिए क्या कर सकती है। ऐसा कहकर तारा ने अपना सर अमन के सामने झुका लिया। अब जैसे ही अमन ने तारा का सर इस तरह से अपने सामने झुका हुआ देखा तो वो एक अलग लेवल पर सेटिस्फाइड हो चुका था, और उसने जल्दी से आगे बढ़कर तारा के माथे को चूम लिया और कहने लगा, बस तुम्हारी हमें कोई और सेवा नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, जब हम कहें तुम हमें मना नहीं करोगी। जैसे ही अमन ने तारा को गहरी नज़र से घूरते हुए ये बात कही, तब तारा को एहसास हो गया कि अमन किस बारे में बात कर रहा था, और तब तारा ये भी समझ चुकी थी कि ज़रूर काली शक्तियों का ऐसा कौन सा काला जादू था जिसकी वजह से उसका अमन इतना ज़्यादा बदल चुका था। जल्द से जल्द तारा परी को इस बात के बारे में पता लगाना ही था। वेल, अमन एकदम फ्रेश होकर तैयार हो चुका था। अमन ने तो ऑलरेडी अपने ऑफिस की छुट्टी ले ही रखी थी, साथ ही साथ उसने जितने भी उसके ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय थे उन सभी को अमित की शादी का इनविटेशन दे दिया था, और जल्दी ही अमन और तारा एक साथ नीचे आए। करिश्मा जी उसके पास आईं और कहने लगी, बेटा, तुम लोगों की भी साथ ही साथ मेहंदी भी होनी है, वो भी आज रात को ही, तो तुम लोग भी अपने कपड़े रेडी रखना, और अगर कपड़े वगैरह ना हो तो अभी मंगवा लेना। देखो, भले ही हम लोग इंसान नहीं हो लेकिन हमें इंसानों की तरह ही यहाँ रहना है, और बरसों से हम यहाँ रहते हुए आए हैं। हमने कभी भी किसी को इस बात का शक नहीं होने दिया है कि हम नॉर्मल इंसान नहीं हैं। हमारा बर्ताव इंसानों के बर्ताव के बिल्कुल जैसा होता है। एक तारा बेटी की तरह ये कैसा इंसान है जिसे हमारा सच पता है। ऐसा कहकर करिश्मा ने गहरी नजरों से तारा को देखने लगी और तारा मन ही मन में मुस्कुरा दी। लेकिन अमन तभी आगे आया और अपनी माँ की ओर देखकर कहने लगा, ओहो मॉम, अगर तारा को ये पता भी है कि हम लोग जिन हैं तो ये हमारा क्या कर भी सकती है? आखिरकार हम जिन हैं, जिन और इंसान कितने कमजोर और मामूली होते हैं, तो इंसानों और जिन्नों में जमीन आसमान का फर्क है। जिन अपने जादू के द्वारा जहां मर्जी वहां जा सकते हैं, आ सकते हैं, जो मर्जी वो काम करवा सकते हैं, लेकिन इंसान को तो हर काम करने के लिए खुद की मेहनत ही करनी होती है। अब आपने देखा, उस वेडिंग प्लानर को देखो, कितनी मामूली सी इंसान है और कितनी मेहनत करके उसने हल्दी का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था और मेहंदी के फंक्शन की तैयारी कर रही है। बेचारी कितना ज्यादा थक जाती होगी। अमन के मुंह से इस तरह से इंसानों के बारे में बात सुनकर तारा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वहीं करिश्मा जी के माथे पर बल पड़ गए थे और वो अमन की ओर देखकर कहने लगी, कौन हो तुम?